राम राम तुम क्यों लेती हो राम नाम तुम। राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया।
गिन पाएगा उनके गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहां है। पहुंचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहां है। जग में सबसे उत्तम है मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है फिर भी रखते संयम है, पर उनके संयम के अपाने को है सीमा। रावण समय है मांगे क्षमा।
बज सत्य का डंका जल पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम संग, आए लक्ष्मण जैसा भाई।
पल पल है भारी वो भी पिता
शांत। पल पल है भारी विपदा है आई। कौन सी विपदा आई? विपदा अर्थात संकट, विपदा अर्थात आपदा। पल पल भारी है और विपदा आई है, कौन सी? सीता जो कि अशोक वाटिका में भगवान के साथ है, चुराई गई और रावण की लंका में शोक वाटिका में पहुंच गई। क्यों क्यों ऐसा हुआ सीता के साथ? लक्ष्मण रेखा और ऐसी सात बातें हैं जो सीता ने कर दी, जिसकी वजह से सीता सुखधाम से दुखधाम में पहुंच गई। ऐसी इच्छाएं थी, श्रीमत का उल्लंघन, तो लगभग ऐसी सात बातें हैं जो सीता के जीवन में हुई, जो एक ब्रह्मा कुमारी के जीवन में होती है। जब वो दुखी हो जाती है, कहां तो एक भगवान के साथ का श्रेष्ठ जीवन और कहां तो वो दूर जाकर रोना चिल्लाना रूसना रूठना नाराज होना दुखी होना। सबसे पहला कारण आकर्षण। स्वर्णिम मृग को देखा और क्या हुआ? आकर्षण हुआ। स्वर्णिम मृग घूम रहे हैं चहुओर। इस जीवन में संसार में असंख्य प्रलोभन, वस्तुएं चीजें व्यक्ति है, धन है, जो कि आत्मा को खींचता है, आकर्षित करता है। पता है वो व्यर्थ है फिर भी आकर्षित करता है। पता है जो जीवन हम जी रहे हैं सेवा केंद्र में वो सर्वश्रेष्ठ जीवन है और इससे बड़ा जीवन और कोई हो नहीं सकता, फिर भी वो खींचता है जो नश्वर है, वो खींचता है जो सांसारिक है, वो खींचता है जो स्वर्णिम मृग है। वो कोई कुमार हो सकता है, कोई अधर कुमार हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई पर्स, कोई बैग, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, कुछ भी हो सकता है जो कि आकर्षित करता है। पहला। दूसरा, इच्छा हुई मुझे चाहिए। सीता ने कहा राम जी से कि ये स्वर्णिम मृग मुझे चाहिए, वस्तु देखी, ये मुझे चाहिए। ये पर्स कहां से ली, एक्स्ट्रा है क्या? मुझे चाहिए, जब तक नहीं मिलती तब तक बेचैनी है, वही चाहिए जो वहां देखी। जैसी मधुबन में थी वैसी हमको भी चाहिए। तीसरा, जिद। पहले था चाहिए, पर वो चाहिए अब क्या बन गई, इच्छा जिद बन गई, अहंकार का प्रश्न हो गया। मुझे चाहिए मतलब चाहिए। समझाया राम जी ने, लक्ष्मण ने समझाया, परंतु मानने को अब सीता तैयार नहीं, क्योंकि वो अब क्या बन गया, उसकी जिद बन गई है। जब तक वो वस्तु नहीं मिलेगी तब तक बेचैनी है। चौथा, मारीच की आवाज थी परंतु राम की आवाज समझ ली। मारीच ने चिल्लाया लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। सीता ने लक्ष्मण से कहा जाओ जाकर देखो तुम्हारे भैया संकट में है। लक्ष्मण ने कहा यह राम की आवाज नहीं है, परंतु उसने कहा यह राम ही की आवाज है। वो थी मन्मथ, वो थी परमथ, परंतु आत्मा को महसूस होता है यही श्रीमथ है। वो मन से निकलने वाली आवाज है। आज की मुरली का प्रश्न, ईश्वरीय मत, दैवी मत, मनुष्य मत, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कंफ्यूज्ड माइंड, जिसे श्रीमती दिखाई नहीं देती क्या है। दूसरों को मुरली पढ़ाने वाले और सिखाने वाले और ज्ञान का प्रकाश देने वाले कभी कभी खुद ही भटक जाते हैं। है आवाज किसी राक्षस की, लग रहा है भगवान की है। ये कैसे पता चले कि ये मेरे अपने विचार है या बाबा की टचिंग है। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने इसका उत्तर दिया है। डबल फॉरेनर्स बच्चों ने बाप से प्रश्न पूछा है, बाबा ये कैसे जाने ये मेरी मत है या मेरे विचार है या मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे मन से निकलने वाली आवाज है या ये आपकी टचिंग है। तीन उत्तर दिए बाबा ने ये जानने के लिए कि ये भगवान की टचिंग है ना कि तुम्हारी मत। पहला, अगर वो भगवान की टचिंग होगी बहुत ज्यादा स्पष्ट होगी, क्लैरिटी। दूसरा, अगर वो बाबा की टचिंग है, अमृत वेला जो हुई है और मुझे लगा कि ये करना चाहिए, यहां जाना चाहिए, ये लेना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए, दूसरा वो बहुत पावरफुल होगी। तीसरा, अगर वो भगवान की टचिंग है तो हमेशा उसमें सफलता होगी। अगर ये तीन चीजों में से एक भी कमी है, अर्थात वो मेरी मनमत थी, बाबा की टचिंग नहीं थी, तो सीता को पता ही नहीं चला। सीता सोचने लगी ये राम की आवाज है, पर वो राम की नहीं थी, वो भगवान की नहीं थी, वो राक्षस की थी, असुर की थी, परमत थी, मनमत थी। पांचवा संशय, राम जो सारे संसार का पालन करने वाला है वो संकट में है, उसे कष्ट हो रहा है, ये सीता का संशय है, भगवान पर संशय है। जिसको अपना जीवन दे दिया अब मेरा आगे क्या होगा, अगर मैं बीमार पड़ गई तो कोई मुझे देखेगा नहीं देखेगा। अगर सब मेरे विरोध में हो जाए तो मेरा क्या होगा। बाबा पर ही संशय, जब ऐसा संशय मन में प्रवेश करता है तब तब सीता धीरे धीरे अपनी यात्रा शोक वाटिका की ओर चालू कर देती है। संशय है, यहां पर भी ऐसा होता है, मधुबन में भी ऐसा होता है, ये भी ऐसा करते हैं। संशय, हर चीज में संशय। छठवा, रावण को पहचान नहीं पाई। सामने जो खड़ा था वो रावण था, परंतु किस वेश में था? ब्राह्मण के वेश में था, साधु के वेश में था। सामने जो खड़ा है श्वेत वस्त्र धारण किए हुए बैच लगाकर है, यही रावण है? समझ नहीं आता है। कैसे पहचाने? अज्ञानियों को तो एकदम झटक दिया, इनसे कोई संबंध नहीं। पर अभी रावण किस रूप में है? श्वेत वस्त्र धारण किए। किसी बड़ी बहन ने, बहन जी ने अपने छोटी बहनों को एक बार एक चित्र दिखाया और कहा, बताओ इस चित्र में क्या है? वो चित्र था ब्रह्मा कुमारी ज्ञानामृत डाल रही है, कुंभकर्ण सोया है और इधर से निकल रहा है चित्र वाला, प्रदर्शनी का चित्र। सबने देखा है ना, जो हम सबको समझाते हैं। उन बनी बहन जी ने कहा कि बताओ इस चित्र में क्या है? बहनों ने कहा इसमें क्या है, ये तो हम रोज सबको समझाते हैं। कुंभकर्ण है जो सोया है, ब्रह्मा कुमारी ज्ञान इधर से डाल रही है और इधर से निकल रहा है। बड़ी बहन जी ने कहा ध्यान से देखो, ये स्पेशल चित्र है, उस कुंभकर्ण को बैच लगा हुआ है। वो कुंभकर्ण कौन है? ब्राह्मण। वो जो सोए हुए ब्राह्मण है, जिन्हें खबर ही नहीं क्या हो रहा है। कभी पुरुषार्थ किया करते थे किसी जमाने में, अब छूट गया, अब केवल कारोबार है बस। दो सब्जेक्ट तो छूट गए हैं, ज्ञान योग, धारणा आदत सी बनी है और फोकस केवल एक ही चीज पर है, द फोर्थ सब्जेक्ट, सेवा। पर वो सेवा जिसमें ज्ञान नहीं, योग नहीं, कभी सफल नहीं होती। सेवा के पीछे तीन चीजें चाहिए, त्याग, तपस्या और वैराग्य। ये तीन चीजें जहां नहीं है और केवल सेवा है, वो केवल समाज सेवा है बस, सोशल सर्विस और कुछ नहीं। सोशल सर्विस हो रही है, सेवा नहीं हो रही है। समाज सेवा जैसे संसार के लोग करते हैं, हमारी केवल समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा करने वाले बहुत है संसार में, हमारी जो सेवा है बहुत सूक्ष्म है और बहुत शक्तिशाली है। और जिस सेवा के पीछे वैराग्य नहीं, त्याग नहीं, तपस्या नहीं, ऐसी सेवा में संघर्ष होगा, संस्कारों की टकराव होगा, लड़ाई होगी, अहंकार का युद्ध होगा, तू तेरा मैं मेरा। रमेश भाई जी थे, रमेश शाह जी, उन्होंने एक खराब अनुभव सुनाया था एक सेवा केंद्र का। शिवरात्रि का प्रोग्राम था, एक सेंटर वाले पहुंचे गवर्नर के सेक्रेटरी के पास, कहने लगे हमारे यहां शिवरात्रि का प्रोग्राम है, आप जरूर आइए। सेक्रेटरी ने कहा ठीक है हम आएंगे। दूसरे दिन दूसरे सेंटर वाले पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमारे यहां शिवरात्रि का प्रोग्राम, आप जरूर आइए। गवर्नर के सेक्रेटरी, हम तो आ रहे हैं आपके यहां ब्रह्मा कुमारीज में। उन्होंने कहा कहां आ रहे? उन्होंने कहा वहां, ये इन्विटेशन दिया। तो इन्होंने कहा वहां मत जाओ, वो अच्छे लोग नहीं, हमारे पास आना, उधर मत जाओ, किधर जाओ, हमारे पास आओ। ये सेवा है या डिससर्विस? अहंकार है, इधर भी अहंकार और उधर भी अहंकार। जो सेवा त्याग नहीं, तपस्या नहीं और वैराग्य नहीं, केवल अहंकार का युद्ध है वो, बस। सीता पहचान ही नहीं पाई ये रावण। चलो यहां तक भी ठीक, अभी भी अपने ही कुटिया में है, पर अब सातवीं स्टेप, लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया, और पार करते ही क्या हो गया, रावण उठा ले गए। लक्ष्मण रेखा अर्थात मर्यादा है, एक ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी के जीवन में क्या मर्यादाएं हो, स्टूडेंट के जीवन की मर्यादाएं अलग, सेवा केंद्र में जो रह रहे हैं उनके जीवन की मर्यादाएं थोड़ी अलग, थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट। तो ये सात चीजें हो गई और सीता दुखी हो गई, चिल्लाने लगी, पुकारने लगी, इंतजार, राम आएंगे छुड़ाएंगे एक दिन, पर तब तक उसे उसी रावण के कारागार में रहना पड़ा। इनमें से सातों में से कोई भी बात हमारे जीवन में ना हो, ना इस संसार का हमें कुछ आकर्षित करे, ना इस संसार की किसी बात के लिए इच्छा, ना ही जिद, ना ही मनमत में श्रीमत मिक्स करे, ना ही कभी संशय हो उसके प्रति, और ना ही कभी उस रावण को। आज की सुबह की मुरली, माया बहुत प्रबल है, सुबह था आज, माया बहुत प्रबल है, और सातवां लक्ष्मण रेखा क्रॉस, मर्यादाएं पार। तो आज के इस भट्टी का विषय है ब्रह्मा कुमारी जीवन की गृहस्थी। क्या ब्रह्मा कुमारी जीवन में भी गृहस्थी हो सकती है? गृहस्थी अर्थात पति पत्नी बच्चे कारोबार दुकान पैसा चिंता लफड़े संसार के धंधा दोरी, क्या इस जीवन में भी ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो ऐसी वो कौन सी बातें हैं जिसकी हमने गृहस्थी खोल रखी है अपने मन में, मानसिक गृहस्थी है ये, और जहां गृहस्थी है वहां दुख है। बाबा ने कहा तुम्हें ट्रस्टी बनना है, गृहस्थी नहीं। ट्रस्टी अर्थात लाइट, गृहस्थी अर्थात बोझ। तो कौन सी ऐसी गृहस्थी है जिसमें एक ब्रह्मा कुमारी फंस जाती है और फिर सीता बन जाती है और रावण की जेल में फंस जाती है, और वहां से पुकारती है, गुहार लगाती है, दुखी होती है, आंसू बहाती है, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो, आ जाओ। अभी अभी देवियों का अभ्यास किया, मैं अष्टशक्तिधारी दुर्गा हूं, शेर पर सवार, भक्त पीछे से आ रहे हैं, कह रहे मां मां मां, और देवी भाग रही है बाबा बाबा बाबा। कैसा दृश्य है ये, भक्त कह रहे मां 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 पीछे से आ रहे, और देवी कह रही है बाबा तुम कहां हो, तेज चला रही है अपना शेर बाग। भक्त कह रहे मां उद्धार करो, देवी कहती है बाबा आप मेरा उद्धार करो पहले। कैसी हम 14 प्रकार की गृहस्थी देखेंगे, जो एक ब्रह्मा कुमारी जिसने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया ईश्वरीय सेवाओं में, और जो भगवान के निमित्त घर में रहती है, संसार के वायुमंडल से दूर है और फिर भी मन में गृहस्थी चालू हो गई है, दुख चिंता पीड़ा दर्द भय असुरक्षा एंग्जाइटी फियर इनसिक्योरिटी सबसे पहली गृहस्थी है, अलौकिक संबंधों की गृहस्थी। वो संसार छोड़ आए हैं, उस दुनिया को छोड़ आए हैं, अब यही दुनिया है, यही परिवार है, यही संसार है, ये परमात्मा परिवार, ये प्रभु परिवार। परंतु इस परिवार में जो अलौकिक संबंध होने चाहिए वो धीरे धीरे लौकिक बन जाते हैं, तो यहां रहते परंतु आपस में ही लगाव के संबंध, किसी को अपना भाई ही बना दिया है। कैसा भाई? विशेष भाई। विशेष भाई के लिए विशेष राखी, विशेष टोली, सब कुछ विशेष, फोन पे लंबी लंबी बातें, मैसेजेस, शेयरिंग कॉल्स, वीडियो कॉल्स। भाई बनाया या और कुछ संशय है, प्रश्न चिन्ह है? अलौकिक संबंध में लौकिकता, यह सबसे बड़ी गृहस्थी है। कोई स्टूडेंट है, कोई कुमार है, कोई भाई है, सहयोगी है, धनवान है, उससे प्रभावित हो जाना। अपनत्व महसूस करना, लगाओ, किसी भाई के साथ सेवा कर रहे और उसी से प्यार। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, टीचर बहनों से मुलाकात। टीचर बहनों को बहुत प्रेम से सेवा करनी है, टीचर बहनों को बहुत प्यार से सेवा करनी है, और दूसरी लाइन है बाबा की, पर किसी के प्यार में फंस के सेवा नहीं करनी है। तुम्हें सेवा बहुत प्यार से करनी है, परंतु किसी के भी प्यार में फंस के सेवा नहीं करनी है। इस परिवार में ऐसे संबंध बना देना कि उसी में फंस गए, सारी दुनिया छोड़ के आ गए, लौकिक मां बाप भाई बहन सबको छोड़ के आ गए, ठुकरा के आ गए, नहीं चाहिए। और यहां आने के बाद किसी भाई में, किसी कुमार में या किसी बहन में ही फंस गए। बहनों बहनों का मोह, आपस में लगाओ, साथ में मधुबन जाएंगे, साथ में बाबा के कमरे में, साथ में भोजन, साथ में सब कुछ, वो ही चाहिए, नहीं रही तो बेचैनी। मधुबन में हमने एक दृश्य देखा था, दो बहनें बैठी थी, एक इधर एक इधर, बीच में थाली, वो उसको खिला रही थी, वो उसको खिला रही थी, प्रेम। हाँ, सबके सामने बैठी थी, खिला रही थी, आपसी प्रेम। प्रेम या मोह? आज की मुरली का वरदान, गीता का फर्स्ट चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर इज अशरीर, लास्ट चैप्टर इज नष्ट मोह। फर्स्ट चैप्टर इज विधि, लास्ट चैप्टर इज विधि से सिद्धि। क्या कर रहे हैं फिर हम? भगवान सिखा रहा है सारे मोह नष्ट कर दो, हम नए नए मोह तैयार कर रहे हैं इस परिवार में। कोई भी याद ना आए, ना स्टूडेंट याद आए, ना जिज्ञासु याद आए, ना सेंटर याद आए, ऐसी मन की स्थिति चाहिए। और इसी का विस्तार, फोन पर बातें लंबी लंबी, 3 मिनट से ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है किसी से भी, काम से काम, दैट्स इट। जितना ज्यादा विस्तार होगा उतना लगाव बढ़ेगा। दादी जानकी ने कभी कहा था विदेशियों को, ऐसा कौन है जो विदेश जाता है वो हाथ खड़ा करे और किसी नए देश, नए शहर, नई जगह जाकर कुछ भी ना खरीदे और वापस आ जाए वैसे के वैसे, कुछ भी ना खरीदे, कोई भी चीज वहां की ना ले, कहीं पर भी आंख ना डूबे। ये फ्लावर पॉट कहां का कैसा है, ये घड़ी बहुत अच्छी है, ये जैकेट बड़ा अच्छा है। वो है निर्लोभी। किसी के घर में गए, वस्तुएं और चीजों को देखने में लगे हैं, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, मन में इच्छा है। 4 साल दादी लंदन में थी जब यहां से पहली बार गई थी, एक संदली थी जिसमें जो दिन में संदली थी और वही रात में बेड बन जाता था। कैसी परिस्थितियों में जीवन बिताया। जो साड़ी पहन कर गई थी 4 साल के बाद आई तो वही साड़ी थी, तपस्वी जीवन था वो। तो सबसे पहली गृहस्थी अलौकिक संबंधों में लौकिकता। किसी को मां ही बना दिया, किसी को बाप ही बना लिया, किसी को बड़ा भाई बना के रख दिया। तुम्हारा केवल एक ही संबंध है, भाई भाई, बाबा के महावाक्य है। नए नए संबंध बनाना इस परिवार में और उनमें फंसना सूक्ष्म श्रीमत का उल्लंघन। और जहां श्रीमत का उल्लंघन होगा परिणाम दुख है। आज सुबह की मुरली, बाप से छुपाओगे तो याद नहीं कर सकोगे। जो कुछ है बाप को सुना दो, सच सच सुना दो तो याद आसान होगी, सच सच सुना दो तो हल्के होंगे। ये दो बातें आई है सुबह की साकार मुरली। अविनाशी वैद्य बैठा है कल की साकार मुरली। कुछ भी छिपाओ नहीं, जो है जो पाप किए, ये पापात्माओं की दुनिया, पाप यहां होते रहते हैं सुबह की साकार मुरली। पर जो है वो पाप को सुना दो तो याद सहज हो जाएगी और हल्के हो जाएंगे। हमारे संबंध बहुत पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट, छुपाने का उसमें कुछ ना हो। जहां छुपाना पड़ता है वहां पर माया है। दूसरी गृहस्थी अलौकिक सेवा की गृहस्थी। बाबा ने कहा है तुम्हें बहुत सेवा करनी है, अंत तक सेवा करनी है, आत्माओं को पैगाम पहुंचाना है, दुखी है, उदास है, सबको बाप का संदेश पहुंचाना है, बाप का परिचय देना है, परमात्मा से सबका मिलन कराना है। परंतु यही सेवा आत्मा को फंसा देती है। जैसे कहा ज्ञान मुक्त और योग मुक्त जो सेवा है वो माया युक्त बना देगी एक दिन। एंड सेवा इज द 4th सब्जेक्ट, इसको भूलना नहीं है। जिन्होंने उसको 1st सब्जेक्ट बना के रखा है और ज्ञान योग को छोड़ दिया है वो सेवा केंद्र, वो आत्मा, वो संगठन, वो परिवार धीरे 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 माया के वश होते जाएगा। इसके लिए इसको नहीं भूलना है कि ये सेवा ही माया ना बन जाए। मुरलियों में महावाक्य आता है जिस सेवा में खुशी खो जाए वो सेवा ही छोड़ दो। आया है नहीं, कई बार आया है मुरलियों में। सेवा गृहस्थी ना बन जाए, बोझ ना बन जाए, जबरदस्ती ना बन जाए। मर मर के कर रहे इच्छा नहीं है, मर मर के कर रहे, जबरदस्ती कर रहे, दुखी हो के कर रहे, लड़ाई हो रही है उसमें, संस्कारों में टक्कर हो रही है, अहंकार का युद्ध हो रहा है, ऐसी सेवा फलीभूत नहीं होती। इसके लिए सेवा से पहले जो तीन बातें कही, त्याग, तपस्या, वैराग्य। त्याग की भावना हो, हमने जो कुछ किया उसका अहंकार नहीं, और विरक्त, परिणाम से कोई लगाव नहीं। सफलता हो तो बहुत अच्छा, न हो तो भी उसे स्वीकार करना। बीच में मुरली चली थी अभी अभी संडे, किसी 84 के दंगे हुए थे, कानपुर का सेंटर जल गया। क्या कहा बाबा ने, जैसे अगर सेंटर बच गया होता तो वाहवा करते, अभी जल गया ना तो भी वाहवा करो। अगर उसमें खुश है तो इसमें भी खुश रहो, नहीं तो यही गृहस्थी बन जाएगी। गृहस्थी अर्थात विस्तार, गृहस्थी अर्थात बाल बच्चे, गृहस्थी अर्थात टेंशन, बोझ। वैसे सेवा ही टेंशन ना बन जाए। एक ब्रह्मा कुमारी बहन आई थी हमारे पास ओपीडी में, कहने लगी बहुत उदास हूं। कह रही थी हम क्या कोर्स कर रहे हैं, खुद ही शर्म आती है, लोगों को शांति बताएं, मैं खुद ही अशांत हूं, क्या कोर्स कर रहा हूं, मैं खुद ही दुखी हूं, लोगों को बताऊं पवित्रता से सुख शांति मिलती है, बाबा आया हुआ है, भगवान धरती पर आया है, कैसे बताऊं। कोर्स तो कईयों को करा दिया अभी तक, पर अब इच्छा नहीं होती कराने की, क्योंकि खुद मैं स्वरूप नहीं हूं, ऐसे कह रही थी। तो सेवा, एक प्रश्न है आप सबसे, सभी उत्तर देंगे उसका, हम सेवा क्यों कर रहे हैं? सेवा इसलिए कर रहे हैं कि खुशी हो, या खुशी है इसलिए सेवा कर रहे हैं? पहला प्रश्न है, वो हाथ खड़े करेंगे जो सेवा इसलिए कर रहे हैं ताकि खुशी मिले। कौन कौन सेवा कर रहे हैं ताकि खुशी मिले? हाथ खड़ा कर। अरे नहीं, खुशी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सेवा कर रहे हैं ताकि खुशी मिले, एक ये ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है खुशी है इसलिए सेवा कर रहे हैं। इसमें कौन कौन है? खुशी है इसलिए सेवा कर रहे हैं। जो पहले है, इसलिए सेवा कर रहे ताकि सेवा से खुशी मिले, अगर सेवा छीन ली जाए तो वो सेवा जो अभी कर रहे हैं वो हटा दी जाए और कोई दूसरी दे दी जाए। अभी भाषण देने की सेवा है उसमें खुशी है, पर भोजन बनाने की सेवा उसमें दुखी है, ये हटा के वो दे दी जाए तो दुखी हो जाएगी। फिर तो सेवा हमारी खुशी का आधार नहीं है, और जिसका है उसको दुखी होना पड़ेगा। हम सेवा इसलिए कर रहे हैं ताकि, क्योंकि हम खुश हैं इसलिए खुश। सेवा परिणाम है खुशी का। सर्विस इज द रिजल्ट ऑफ हैप्पीनेस विच इज विद इन, जो ऑलरेडी है हमारे पास। इस भाव से सेवा, हाँ वो दूसरी बात है कि सेवा करो तो खुशी मिलती है, वो एक दूसरा सब्जेक्ट है, वो तो मिलेगी ही, परंतु खुशी हमारे पास है इसलिए सेवा की जाए। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, इसको समझना है। वो दूसरी बात है कि कभी दुखी हो गए तो सेवा करो तो अपने आप खुशी लौट आएगी, वो एक अलग सब्जेक्ट है, पर आधार हमारी खुशी है, ठीक है। तो अलौकिक सेवा भी गृहस्थी ना बन जाए, और सेवा की और सेवा में भी क्या हो, डिटैचमेंट, डिटैच्ड। सेवा कर ली, अब उस सेवा से भी डिटैच्ड, अलग। सेवा से भी कोई अटैचमेंट ना, उसका वर्णन ना उसका कोई विस्तार। ये तो सेवा करते हैं इतनी, एक घंटे की सेवा 50 फोटो, और उससे भी बड़ी बात वो दूसरों को भेजते हैं, देखो अब यही तुम्हारी सजा है, हमारे फोटो देखो, सारे फोटो देखो, और देखने के बाद में भी अगर कुछ कहा नहीं तो नाराज। सेवा डिटैचमेंट से करनी, सेवा कर ली और समर्पित कर दिया। तीसरी गृहस्थी है BSNL, BSNL क्या है? BSNL क्या होगा? बी अर्थात ब्राह्मण, एस अर्थात संसार, ब्राह्मण संसार, एन अर्थात उधर क्या है, एन का अर्थ, BSNL का अर्थ क्या है? निगम लिमिटेड, तो यहां पर ब्राह्मण संसार निगम लिमिटेड अर्थात ब्राह्मण संसार का ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, समाचार, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इस बहन का क्या हुआ, उस बहन का क्या हुआ, मधुबन में क्या हो रहा है, इस सेंटर में क्या हो रहा है, अरे तुमको पता हुआ क्या इसका ऐसा हुआ, इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर, इसको क्या कहते हैं बाबा, झरमोई झगमोई, गॉसिप्स, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या कर रहा है, वो क्या करता है, तुमको क्या करना है, कौन क्या करता है, वो पहले वो डिपार्टमेंट में था, अभी वो डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में चला गया, क्यों विचार विमर्श, ऐसे क्यों हुआ, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इधर की बातें उधर और उधर की बातें उधर। स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट जैसे नारद था ना, फर्स्ट स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट, क्या करता था वो, झगड़े लगाता था इधर की बातें उधर करके, वैसे इधर स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट नहीं बनना है, पत्रकार, संसार समाचार, आज के ब्राह्मण संसार समाचार, डिस्कशन, एक घंटा डिस्कशन चलने के बाद कल इसी टाइम फिर मिलेंगे, न्यू न्यूज के साथ, नई खबरों के साथ, सनसनीखेज, ब्रेकिंग न्यूज, वो बहन उस सेंटर पर थी, अभी उस सेंटर से उस सेंटर में ट्रांसफर हो गई है, न्यू न्यूज, क्या हुआ होगा, क्या चल रहा था, और थोड़ी इंफॉर्मेशन निकालो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जितनी न्यूज खबर इंटरेस्टिंग होगी उतनी वो व्यर्थ होगी, जितनी न्यूज इंटरेस्टिंग उतनी वो व्यर्थ। इसके लिए इन न्यूज से भी वैराग्य, एक इंग्लिश फिलोसोफर, फ्रांस का फिलोसोफर जीन पॉल सात्र, उसने लिखा है द अदर इज हेल, द अदर इज हेल, दूसरों के साथ क्या हो रहा है तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं, नरक है वो, तुम केवल अपनी चिंता करो अंतर मन में क्या चल रहा है, कहां तक पहुंचे हैं अध्यात्म की इस दौड़ में, कहां तक जागृति आई है अंदर, क्या अब भी मेहनत चल रही है या कुछ और। आज का स्लोगन, परमात्मा प्रेम में हम कितने खोए हैं, शायद खोए नहीं इसलिए तो मेहनत करनी पड़ रही है, कितना मालामाल किया है आज सुबह के महावाक्य मीठे बच्चे, तुम्हें क्या करना है, खजानों से स्वयं को मालामाल कितना किया है, ये सब छोड़कर इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो क्या करती है, ये क्या करती है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, वेस्ट ऑफ टाइम, गॉसिप्स। चौथा, चौथी गृहस्थी बहानेबाजी। कारण, कारण को निवारण करो, समस्या को समाधान करो, ये बाबा की महावाक्य है। पर कारण देना, ये क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा, वो क्यों हुआ, क्योंकि ये कारण। अमृत वेला क्यों नहीं किया, क्योंकि लेट सोए। कितना भी लेट सो, उससे अमृत वेले का क्या संबंध। मम्मा का, मम्मा की आदत थी 2 बजे उठने की, एक बार 11 बज गए, सबको पता है, फिर भी 2 बजे उठी। किसी भाई ने पूछा, मम्मा आप इतना लेट सोई थी, गेस्ट आए, ये आए। मम्मा ने कहा, एक श्रीमत तो मैं पहले ही तोड़ चुकी हूं, लेट सोना, जल्दी न सोना, ये श्रीमत तोड़ना है, तो क्या मैं दूसरी भी श्रीमत तोड़ू। कारण देना, बहाने बनाना, बहानेबाजी, रीजंस, लेम एक्सक्यूजेस, ये हुआ, ये कारण था, वो कारण था, ऐसा कारण था, वैसा कारण था। प्रकृति का कोई भी कारण हमारे पुरुषार्थ को स्पर्श ना करे, ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, 3 चीजें, ये तीनों एक तरफ, पुरुषार्थ एक तरफ, बारिश होने दो, गर्मी होने दो, ठंड होने दो, अलग। दूसरा, व्यक्ति, उसके बोल और उसका व्यवहार, ये 2 चीजें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, व्यक्ति के बोल और उसका व्यवहार। पुरुषार्थ इधर हो, ये 2 इधर, इसको डिस्टर्ब ना करें। दादी जानकी ने उस दिन क्लास में कहा था, ओम शांति भवन में, एक है झूठ बोलना, एक है बहाने बनाना। बहाने बनाना ये झूठ बोलने से भी ज्यादा बुरा है। झूठ बोलने वाला तो सीधा झूठ बोलता है, पर बहाने बनाने वाला षड्यंत्र करता है। क्यों पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये कारण है, झूठे कारण सब। आज की मुरली में कहा है बाबा ने, सच सच बाप को सुना दो तो हल्के होंगे, और सच बोलेंगे तो याद कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। झूठ बाप को पसंद नहीं। एक व्यक्ति सोया है और वो नाटक कर रहा है सोने का, उसको कैसे उठाएंगे, उठाया जा सकता है? जो नाटक कर रहा है सो नहीं रहा है, सोए हुए व्यक्ति को उठाया जा सकता है, क्योंकि वो सो रहा है, उसको उठा दो जाग जाएगा। पर एक सो नहीं रहा है, नाटक कर रहा है सोने का, कैसे उठाएंगे उसको, इम्पॉसिबल। जो व्यक्ति झूठ ही बोल रहा है उसको कैसे जागृत करेंगे, मुश्किल है। आने वाले संडे की जो मुरली है, अब नहीं तो कब नहीं, उसमें एक शब्द आया है, रूहानी जागृति। तो ये आप सबको टॉपिक दे रहे हैं, इस पर लिखना है सबको, रूहानी जागृति, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एक है अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, दूसरा है अवेकनिंग विद इन ब्रह्मा कुमारीज। विद इन अर्थात उसके अंदर। उसके बाद में अगली गृहस्थी, सुख और सुविधाएं, कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस। जितनी सुख सुविधाएं ज्यादा, उतनी तपस्या कम। नेक्स्ट, सुख और सुविधाएं, कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस, ये गृहस्थी है 5वीं। अभाव में रहने का अभ्यास है. सब कुछ परंतु स्वभाव ऋषि सा, वैरागी स्वभाव. योग वशिष्ठ नाम की किताब है जिसका मुरलियों में वर्णन आता है, उसमें राम की अवस्था का वर्णन है. राम अभी वन गया नहीं है, राम अभी राजभवन में है, फिर भी वो सुख सुविधाओं की वस्तुओं को देखता है तो उसे दर्द होता है, पीड़ा होता है, पीड़ा होती है वो सब देख के, क्योंकि स्वभाव वैरागी है उसका. जितना वैरागी स्वभाव उतना ही तीव्र पुरुषार्थ. जितना सुख सुविधाएं चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अच्छा अच्छा सब चाहिए, बस व्यक्ति उसी अच्छे 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 के पीछे तपस्या करना भूल जाता है. ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कैसा भी चाहिए. दादियों ने कैसे तपस्या की, अभाव में तपस्या की, बेगरी पार्ट में कुछ नहीं था फिर भी तपस्या चालू थी. ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब सब मेरे साथ अच्छा हो, जरा सा भी थोड़ी सी कमी हो तो दुखी हो जाते. साधन और सुविधा के शैया पे मत सो जाना. वक्त है कम, लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा. हे परम तपस्या के पथिक को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा. साधन और सुविधा के शैया पे मत सो जाना. इतना कंफर्ट्स है तो बहुत अच्छा, परंतु मन फिर भी वैरागी हो. एक सेवा केंद्र पर हम गए थे, सेंटर पर, बहुत बड़ा सेंटर, सब कुछ है, पर वो बहन जी का जो बिस्तर है, एक पतली सी चादर बस उसी के ऊपर सोती है. स्वभाव ही वैरागी है. सब कुछ है सबके लिए, दूसरों के लिए, छोटी बहनों के लिए, खुद वो चटाई जैसी होती है ना, पतली पतली बेड पर बस वो, ये गद्दी भी नहीं. तो अपने आप को आज सुबह की मुरली, तुम कीचड़े की दुनिया में बैठे हो, आज सुबह की मुरली ये छीछी दुनिया है, आज सुबह की मुरली ये विषय वैतरणी नदी है. तीन शब्द आए इस दुनिया के लिए. ये कीचड़, तुम कीचड़ की दुनिया में बैठे हो, ये विषय वैतरणी नदी है, ये छीछी दुनिया है. मन को वैराग में स्थित रखना है हमेशा. छठवा गृहस्थी, छठवी कंपैरिजन, तुलना. इस बहन को सब कुछ मिल रहा है, ये बहन मेरे से आगे जा रही है, वो भाई मेरे से आगे जा रहा है, वो सेंटर हमसे आगे जा रहा है. कंपेयर कर रहे हैं हमेशा एक दूसरे से साथ. हर आत्मा यूनिक है यहां पर, यहां कोई कंपैरिजन नहीं. ये ज्यादा पढ़ी लिखी है, मैं कम पढ़ी लिखी हूं, इसको ज्यादा स्किल्स है, इसके पास मेरे पास कम है, ये बोलती अच्छी है, मैं बोलती कम अच्छी हूं, ये इसको एंकरिंग अच्छी आती है, हमें नहीं आती, ये गायक है हम नहीं है, इसको भोजन अच्छा बनाना आता है मुझे नहीं आता, इसको चांस मिलते रहते मुझे नहीं मिलता है. कंपैरिजन, हर चीज में कंपेयर कर रहे हैं, और जहां तुलना होगी वहां दुख होगा. हमें कंपेयर नहीं करना है, एक दूसरे से सीखना है. हो सकता है छोटी सी कन्या है, अभी अभी आई सेंटर पर, छोटी उम्र पर पता नहीं कौन सी तपस्या करके आई है किसी जन्म में, हो सक्ता है सेकंड बर्थ भी किए, ये उसी परिवार में दूसरा जन्म है उसका, एकदम आगे चली जाएगी, बड़े बड़े पीछे रह जाएंगे. जो आगे बढ़ रहा है उसे प्रोत्साहित करना है. जिसमें हमको दिखता है हमसे ज्यादा कोई गुण है, स्किल है, सीखना है उससे, बजाय इसके एक ईर्ष्या करना, विघ्न उत्पन्न करना उसके मार्ग में, नफरत बदला षड्यंत्र। यहां हर एक को वही मिल रहा है जो उसके भाग्य में है। कोई बहुत सेवा कर रहा है, बहुतों को संदेश दे रहा है, हो सकता है ये भी तो हो सकता है उसके ज्यादा हिसाब है उन आत्माओं के साथ जिसको वो संदेश दे रहा है, दे रही है। इसीलिए ईर्ष्या क्यों, कंपैरिजन क्यों, कंपटीशन क्यों? कंपटीशन करनी है तो ज्ञान योग में कंपटीशन करनी है, याद में कंपटीशन, याद की रेस करनी है, ये सब चीजों में रेस नहीं करनी है। कंपैरिजन को हटाना है, हर एक यूनिक है, नॉट जस्ट यूनिक, ईच वन इज अ मास्टरपीस, सर्वोत्कृष्ट कलाकृति है एक एक आत्मा, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मधुबन में ओम शांति भवन बन गया 83 में, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, सब लोगों ने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत से बहुत वो प्रोग्राम हुआ जिस पर मुरली अभी चली थी, आई थी अभी कुछ समय पहले, 83 की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ओम शांति भवन। उसमें एक सूक्ष्म घटना घटी थी और वो ये कि सब ने मिल के सहयोग किया, पर महिमा उनकी हुई जिन्होंने भाषण दिए थे स्टेज पर। तो जिन्होंने सहयोग दिया उनके मन में ऐसा भाव आया कि हमारी तो कोई महिमा ही नहीं हुई, महिमा किनकी हुई जो स्टेज पर थे और जिन्होंने भाषण दिए, स्पीचेस दिए उस कॉन्फ्रेंस में। परंतु भाषण देना ही सब कुछ नहीं है, अगर देखा जाए तो लोग ज्यादा प्रभावित भाषण से कम वहां की व्यवस्था से होते हैं। ज्यादा प्रभावित तो कोई आया मधुबन में शिविर में या किसी विंग में किसी कॉन्फ्रेंस में, सब कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा, भाषण बहुत अच्छे लगे, परंतु भाषण की कोई भी बात उसे याद नहीं है। उसे याद क्या है, वो अनपढ़ माता जिसने भोजन परोसा था, वो सारी चीजें उसको याद है। कि ज्ञान सरोवर में बहुत बड़े ऑफिसर आए थे बीच में, तो एक माता ने उनको प्रदर्शनी समझाई आर्ट गैलरी म्यूजियम में, फिर वो जो थे कमिश्नर थे या कोई थे तो बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, उन्होंने ऐसे कहा, संशय व्यक्त किया कि ये सब क्या भगवान है, मतलब भगवान का कार्य है। तो वो जो अनपढ़ माता थी समझाने वाली, उसने उसको ऐसे किया और देखा ऊपर से नीचे तक, ऐसे देखा और कहा, दिखने में तो पढ़े लिखे दिखते और इतना भी नहीं समझता भगवान कौन है। तो उसको एकदम से हर्ट हो गया, वहां से गया सेंटर पे कोर्स किया वगैरह वगैरह, फिर ज्ञान में चल पड़ा। किसकी वजह से? भाषण की वजह से। जो स्टेज पर भाषण सुने कुछ भी याद नहीं, वो माता ने जो बोल दिया वही याद रह गया बस, जो कि अनपढ़ थी जिसको तो कुछ पता भी नहीं था ये कौन है, ये भी नहीं पता उसको। तो कंपैरिजन नहीं करना है, हर एक कैसा है यहां यूनिक है और हर एक मास्टरपीस है, हर एक में विशेषता है, बिना विशेषता के वो बाप का बन ही नहीं सकता। अगले संडे की मुरली, तुम यहां आए हो ये तुम्हारी सबसे पहली विशेषता है, यही विशेषता है तुम्हारी। कितने हो गए? 6 या ज्यादा। उसके बाद में अगला डिजिटल गृहस्थी। कौन सी गृहस्थी? डिजिटल गृहस्थी, इलेक्ट्रॉनिक गृहस्थी, ये सबसे बड़ी गृहस्थी है आज, हर एक उसमें लगा हुआ है। लंबी लंबी बातें, फोन कॉल्स, प्राइवेट कॉल्स, प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, गुप्त वार्तालाप, मैसेज भेजते रहते हैं। कौन भेजते रहते हैं? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। कौन से मैसेज भेजते थे? पति पत्नी के जोक्स, अफवाहें, हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी सदगुरुवार, हैप्पी नुमा शाम का योग, हैप्पी श्राद्ध। कुछ भी, कितना इसका विस्तार है। और सबसे बड़ी माया भी है, यहां से फोन चालू है उधर मधुबन का वो भाई, वो क्या करेगा सेंटर की समस्या के लिए? सोच रहे वो उससे उत्तर मिलेगा, वो सोच रहा है मैं रहम दिल बनता हूं, और बातें चालू है आधा आधा घंटा, एक एक घंटा व्यर्थ। क्या कोई देहधारी साथी बन सकता है, कंपेनियन बन सकता है, शिव बाबा को रिप्लेस कर सकता है? फिर भी आधार, और फिर दुखी। ये कितनी बड़ी माया है। इसके लिए इसका जितना मोबाइल का एक ही उपयोग है, ज्ञान योग सेवा, बस। इसके अतिरिक्त अगर इसका उपयोग हो रहा है तो वो माया है। अगर इसको ज्ञान के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, योग के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और सेवा के लिए नहीं, सेवा के नाम पे कुछ और ही हो रहा है, तो दिस इज माया। इसके पहले भी कई बार सुनाया है, एक व्यक्ति होता है, उसे जब भी सोता है उसको अपने बिस्तर के नीचे जानवर दिखते, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, खतरनाक खतरनाक प्राणी दिखाई देते। कितने डॉक्टरों के पास जाता है, ठीक नहीं होती है। एक रोज रात में सोता है एक ही स्वप्न, और सुबह धड़ उठता है और दुखी होता है। लोग कहते हैं इसको दिखाओ, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, सबको दिखाओ, वो कहता है सब कुछ हो गया पर ये बीमारी जाती नहीं है। तो जब भी उठता है सुबह सुबह दुखी होकर निकलता है। एक दिन उठता है और इतना खुश, गांव वाले पूछते क्या हुआ, आज वो स्वप्न नहीं आया? वो कहता है आज नहीं आया, क्योंकि मेरा जो भाई है ना, एक चचेरा भाई, वो आया, वो कारपेंटर है, उसने बेड के चार पैर ही काट दिए। क्योंकि स्वप्न में क्या आता था, बिस्तर के नीचे ही ये सब फैलते थे चार चीज। तो वो कहता है कि चार पांव ही काट दिए, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, चार है, इन्हीं के नीचे सारे विकार है, इन्हीं के नीचे स्वप्न आते हैं। अभी इंटरनेट बंद है तो शांति है, कितनी शांति है, चालू आज ही से चालू हुआ। चलो इंटरनेट, अंतरजाल, उसका उपयोग, वो हमें ना फंसाए, बस इतना ध्यान रखना है। वो आग की तरह है, उसमें रोटी भी बन सकती है तो घर भी जल सकता है। एक क्लिक, ब्रह्मा कुमारी से शुद्र कुमारी, एक क्लिक। ये हाथ उंगलियां गुनेगार है, इसको भी स्वच्छ करना है। मुरलियां लिख लिख कर, चिंतन लिख लिख कर, समान लिख लिख कर, भगवान के महावाक्य लिख लिख कर खता की है इन्होंने। द क्रिमिनल फिंगर्स, डिजिटल गृहस्थी, ये भी एक गृहस्थी। उसके बाद में अगली गृहस्थी, आठवीं, डिपेंडेंसी की गृहस्थी, अर्थात अवलंबन, निर्भर रहना किसी पर। उसमें भी चार पांच प्रकार है। पहला है फिजिकल डिपेंडेंसी, अपने आप को इतना स्वस्थ रखना है कि ऐसा समय ना आए कि किसी का आधार ही लेने पड़े हर चीज के लिए, उठना बैठना चलना फिरना, शारीरिक स्वास्थ्य। उसमें फिर तीन चीजें हैं जो लिख के रखनी है अपनी डायरी में हेल्थ के लिए। पहला, प्रिवेंशन, हमारी चलन खान पान ऐसा ना हो कि जिसमें हम बीमार पड़ जाए इसकी बहुत ज्यादा संभावना हो। बाबा के महावाक्य है, जो शरीर को नहीं चला सकते वो राज्य को क्या चलाएंगे। दूसरे महावाक्य है बाबा के, जो अपनी ही गलती से बार बार बीमार पड़ते हैं बाप उनको ज्ञानी योगी नहीं कहते, ये दूसरी बात। ये दोनों भी बाबा के महावाक्य है। अपनी ही गलती से जो बार बार बीमार पड़ते हैं बाप उनको ज्ञानी टू योगी आत्मा नहीं कहते। बाबा ने हर चीज का ज्ञान दिया है और तुम्हें अपने शरीर का भी ज्ञान दिया। बॉडी मैनेजमेंट इज किंगडम मैनेजमेंट। जो शरीर को चला सकेंगे वो राज्य को भी चला सकेंगे। दूसरी पॉइंट, स्वास्थ्य के लिए, बॉडी के लिए जनरल चेकअप। हमारे ओपीडी में इतनी सारी बहनें आती हैं, हर दिन में 20-30 बहनें, अगर 50-60 पेशेंट है उसमें से ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर रहने वाली 20-30 बहनें उसमें कुमारियां भी रहती है। कितनी बहनों को कितनी नई नई बीमारियों का पता चलता है। किसी का हीमोग्लोबिन 6, किसी का 8, कमजोरी लगती है और सोचती है कमजोरी इसके कारण है कि सेवा केंद्र पर तनाव है। हर महीने में 2-3 बहनें ऐसी निकलती है कि जिनका थायराइड, अभी अभी एक बहन 100 निकला, नॉर्मल 5 है, और उदास, और सोचती थी उदासी किसके वजह से, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से नहीं थी, वो फिजिकल प्रॉब्लम था। एक दूसरी बहन आई उस दिन, शुगर 600 शुगर, फर्स्ट रीडिंग, इसके पहले कभी कोई चेकिंग नहीं की। तकलीफ बहुत, पर सोचती थी कुछ और कारण से। साल में वंस कंप्लीट बॉडी चेकअप होना चाहिए। यंग बहने हैं, पिछले 6 मास में 3 बहनों को हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी दी गई। एक की उम्र तो 35-32 और एक का कैंसर बहुत लेट स्टेज पे डिटेक्ट हुआ, जिसने अभी अभी शरीर छोड़ दिया। 1 साल पहले आई, मैमोग्राफी किया, उसमें गांठ थी, ब्रेस्ट कैंसर, उसको कहा तुरंत इलाज करना है। उसने कहती है मैं आऊंगी, वो गई। यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, कोई आयुर्वेदिक बाबा, हमने कहा तो तुरंत आओ, तुरंत करो। वो कहती है कहा करूंगी करके चली गई। उसने कहा मेरे रिश्तेदार है उधर दिल्ली में, बड़े डॉक्टर, उनके पास जाके करूंगी। उन्होंने कहा ठीक है। यूट्यूब पे वो वीडियो देखा, 10 महीने वो वीडियो में जो दिखाया वो किया। 10 महीने के बाद आई, अब कैंसर पूरे शरीर में फैल गया, लंग्स में, स्पाइन में। पेट स्कैन कराने अहमदाबाद भेजा, 4 दिन अहमदाबाद में रही। उन्होंने कहा घर ले जाओ, लेके आए हॉस्पिटल में, 5-6 दिन रही, डेथ। ओम शांति। लास्ट तक बस बाबा देख लेगा, बाबा है ना, बाबा तो है। पर लापरवाही भी तो है। 1 हफ्ता पहले एक सेवाधारी भाई आया, हार्ट अटैक, मधुबन में सेवा करने आया, हार्ट अटैक। उसकी युगल से पूछा कि उसको कोई बीमारी, उसने कहा हाँ शुगर। दवाई लेते, 6 महीने से दवाइयां छोड़ दी। क्यों? अब बाबा ही मेरी शुगर देख लेगा बस। बाबा किस लिए है? सेकेंड पॉइंट जनरल चेकअप, और तीसरी पॉइंट स्वास्थ्य की, अगर बीमारी आ भी जाए, अगर कोई बीमारी आ भी जाए तो वाह व्याधि वाह, शरीर का हिसाब किताब चुप तो हो रहा है। दुखी नहीं होते बैठना है, रोते नहीं बैठना है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उनके साथ क्यों नहीं होता है, सब लोग बच गए, मेरा ही क्यों पैर फ्रैक्चर हो गया, सब लोग तो थे कार में जब एक्सीडेंट हुआ। दुखी हो जाते हैं बीमारी आने के बाद। बीमारी आ भी गई क्योंकि बहुत सारे कारण है, हिसाब किताब है जन्म जन्म का, और शायद कोई गलती भी हुई है, फिर बीमारी तो आएगी। और गलती ना भी हो, एक बहन आती है हॉस्पिटल में, 30 साल की उम्र है, स्कूटी से जा रही थी, गीता पाठशाला, एक्सीडेंट हो गया, स्पाइन इंजुरी, हाथ और पैर दोनों पैरालाइज, जीवन भर के लिए, इतना सी उंगली भी नहीं हिलती है, ऐसे पकड़ के उसको उठाना पड़ता है 4 लोग, पर वो दुखी नहीं है, खुश है, स्वीकार कर लिया है, यही जीवन है। अब पहले वो सेवा थी, अब मनसा सेवा है, बस उसको उठाने के लिए 4 लोग लगते हैं, चेयर पे बिठाने के लिए। उसकी लौकिक बहन है, वो सेवा करती है, हां, परंतु ये कर्मों की सूक्ष्म गति भी है ना, इसको भी समझना है, ऐसा भी होगा, ऐसी ऐसी चीजें होगी जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। एक छोटी बहन, रमा कुमारी बहन है, 20 साल की, अभी नई बीमारी चालू हुई है, फ्रेडरिक अटैक्सिया, जेनेटिक डिसीज है, अभी तक चलती थी, अभी चलना बंद हो गया, अभी दीवार को पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है, वो बीमारी ऐसी है, परिवार में चलती है, अभी उसका भाई है छोटा 16 साल का, उसको भी चालू हो गई, अब तक ठीक से चल रहा था, अभी धीरे धीरे चालू हो गई और धीरे धीरे बढ़ेगी ये बीमारी। एक माता अभी मिली एक हफ्ते पहले ही, साउथ की, उसके 3 बेटियां हैं, एक 22 साल की, एक 25 साल की, एक 18 साल की, तीनों के तीनों पैरालाइज है, माताजी का सारा समय, उनका सब कुछ करने में जाता है, सुबह से लेकर रात तक, और वो ज्ञानी माता है, 10 साल से कर रही है उनका सब कुछ, बड़े हिसाब है, कड़े हिसाब है ये सारे, ये भी होगा, और होगा तो इसको भी स्वीकार करना है, और होगा तो इसमें भी वाह 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 व्याधि वाह। 31 दिसंबर 1995, अव्यक्तवाणी, अगर बीमारी आ जाए तो वाह व्याधि वाह, खुश होके जाएगी, दुखी नहीं हो जाना है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, चिड़चिड़ा नहीं हो जाना है। एक ब्रह्मा कुमारी बहन को हमने देखा, आंखों से कैंसर सारे शरीर में फैल गया, इतना चिड़चिड़ापन, इतना चिड़चिड़ापन, बाबा का तो नाम निशान नहीं। और जब लास्ट मोमेंट आया शरीर छोड़ने का, मसाला डोसा मसाला डोसा मसाला डोसा खाते खाते शरीर छोड़, बाबा का नाम तक नहीं था, इतना चिड़चिड़ा। इसके लिए जब स्वस्थ है तभी साधना करनी होती है, बीमारी में तो मुश्किल हो जाता है। 104 पुकार करो, बाप को याद करो, कहां कर सकते। तो बीमारी की 3, तो पहली डिपेंडेंसी है फिजिकल, ऐसी जागरूकता हो इवन स्वास्थ्य के प्रति कि हम डिपेंडेंट ना हो जाए, पहली बात। दूसरी डिपेंडेंसी इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी, बौद्धिक, किसी ने कोई इंटेलेक्चुअल काम दिया, ये बना वो, वो कहते हमसे तो नहीं होगा, हमको तो कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, हमको तो मेल भेजते नहीं आता है, किसी और को बोले, क्यों तो सीखो, हमको तो अकाउंट सीखने करने नहीं आता है, क्यों नहीं आता, सीखो फिर, सब कुछ सीखा जा सकता है इस संसार में। ब्रह्मा कुमारी अर्थात ऑलराउंडर, उसको सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ, गाड़ी चलाने से लेके सब कुछ, ऑलराउंडर। तो ये नहीं कहना कि हमको तो ये नहीं आता, हम कैसे करें, हमको तो एंकरिंग नहीं आती, हमको तो वो नहीं आता है, हमको तो टिकट बुक करना नहीं आता है, हर कुछ सीखने से सब कुछ सीखा जा सकता है, और जितनी ज्यादा स्किल्स होगी उतने ही हम यज्ञ में मदद कर सकते हैं अपनी तरफ से। बाबा को तो ऐसे हैंड्स चाहिए जो ऑलराउंडर है। तीसरी इमोशनल डिपेंडेंसी, भावनात्मक, इतने बंधन में आ गए हैं कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे इमोशंस को कोई दूसरा कंट्रोल करता है, ये भी बंधन है एक। अगला सोशल डिपेंडेंसी, वो भी कम से कम, और सबसे खतरनाक जो है वो है स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी, पुरुषार्थ के लिए किसी व्यक्ति का आधार बना के रखा है, वो अगर साथ में है तो पुरुषार्थ करेंगे, वो चला गया तो अब पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, भट्टी का प्रोग्राम है तब पुरुषार्थ, और नहीं है तो रूटीन चल रहा है। हम अपना पुरुषार्थ खुद ही करें, खुद ही अपनी भट्टी डिसाइड करे, खुद ही डिसाइड करे कल मेरे भट्टी का दिन है, कल मुझे 8 घंटा मौन रहना है, कल मुझे 4 घंटा सेवा करनी है, कल मुझे बैठ के 2 घंटा योग करना है, कल मुझे कल की मुरली इससे पहले कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं मुझे खुद उसकी 2 बार स्टडी करनी है, डिटेल में, गहराई में, बहुत डेप्थ में, एक एक वाक्य को समझना है। आज सुबह की मुरली, सेकंड लाइन मुरली की, ओम शांति, अर्थात जैसे ही ओम शांति कहते हो आत्मा को याद आता है अपना घर, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आज मुझे बस इसी का अनुभव करना है, अपनी भट्टी खुद ही निश्चित करना है। एक तरफ तो स्टूडेंट्स है जिनकी पालना करनी है, और एक तरफ ये एक अपना सूक्ष्म कार्य है जो अंदर ही अंदर होता रहे। तो किसी भी तरह की डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी भी एक गृहस्थी है। उसके बाद में अगली गृहस्थी ईगो की गृहस्थी, अहंकार की गृहस्थी। इंग्लिश में एक कहावत है, इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वो हारता है। इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। जीतने दो दूसरे को, यह अहंकार के युद्ध में हमें जीतना नहीं, झुक जाना है, क्योंकि हमारी स्थिति उस व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति नहीं। झुक गए ठीक है, उसको तुम जीत जाओ, नहीं तो ये अहंकार बड़ी गृहस्थी को निर्माण करता है। तो इसमें फिर बदला आ जाता है, इसमें फिर अहंकार आ जाता है, इसमें फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है, उसको गिराने का भाव आता है, षड्यंत्र रचते हैं एक दूसरे को गिराने के लिए, और तो और कुछ तंत्र मंत्र भी करते हैं, सब कुछ करते हैं जो कुछ कर सके करते हैं। और इन सब चीजों का प्रभाव योगी आत्मा पर नहीं हो सकता, पर ये तो हमेशा याद रखना है। लोग डर जाते हैं कोई हम पर कुछ कर रहा है, कौन क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। बाबा के महावाक्य शिव मंत्र के आगे कोई भी जंत्र तंत्र मंत्र चल नहीं सकेगा। शिव मंत्र सबसे बड़ा तंत्र है। अगली गृहस्थी है एक्सपेक्टेशंस की गृहस्थी, अपेक्षाएं। सीनियर से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, अपने साथियों से अपेक्षाएं हैं, जूनियर से अपेक्षा है, स्टूडेंट से बहुत सारी अपेक्षाएं, और जब वो अपेक्षाएं पूर्ण नहीं करते तो दुखी होते हैं। उन्होंने हमको पूछा नहीं, उन्होंने हमको ध्यान नहीं दिया, हमारे ऊपर हमारी केयर नहीं की, हमारी अटेंशन नहीं दिया, हमारी स्तुति नहीं की, हमारी प्रशंसा नहीं की, स्वागत नहीं किया, सत्कार नहीं किया, सिंपति नहीं दी, सहानुभूति नहीं दिखाई। क्यों चाहिए किसी से कुछ, क्यों किसी की स्तुति चाहिए? हमने सेवा की बस हो गया, ऊपर जमा हो गया है। अब देहधारियों की सेवा स्तुति की हमको आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक सिस्टम है यहां पर, स्पिरिचुअल सिस्टम, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ना प्यार चाहिए, ना केयर चाहिए, ना अटेंशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बाबा दे रहा है वो सब देगा। हमने किसी देहधारी को अपना जीवन नहीं अर्पित किया है, भगवान को अर्पित किया है। उसके बाद में अगली गृहस्थी भोजन, फूड। भोजन ही जीवन का लक्ष्य ना हो, जो सुबह से लेकर रात तक बस किचन में ही समय जा रहा है। दिन रात भोजन का ही चिंतन ना हो, अब क्या खाऊं, अब क्या खाऊं, अब क्या बनाऊं, अब क्या बनाऊं। नहीं तो वो भी गृहस्थी बन जाएगी। स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा था विदेश में, व्हाट हैज हैपेंड टू योर कंट्री, तुम्हारे देश का क्या हुआ? उन्होंने कहा था मेरा देश चूल्हे चौके में जाके भस्म हो रहा है। वेयर किचन इज टेम्पल एंड फूड इज गॉड। बस वही सोचते रहते दिन रात क्या खाना है और क्या पीना है, उन्हें धर्म की कहां चिंता है। ब्रह्मा कुमारी बनना था, सारा जीवन किचन में बिताना तो नहीं। भोजन गृहस्थी ना बन जाए, ब्रह्मा भोजन का अपना महत्व है, देवताएं भी तरसते हैं, वो दुख भंजक है। 16 फरवरी 1988 अव्यक्त मुरली, ये ब्रह्मा भोजन है, दुख भंजक है, इसमें दुआ भी है दवा भी है, एक एक कणा मोहर के समान है, ये सब मान्य है, परंतु उसमें डूबे नहीं रहना है। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वाद से परे, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वाद से परे, बाबा की महावाक्य है। एक ही प्रश्न है कि हम किस लिए खा रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं? एक प्रश्न अपने आप से पूछने वाला प्रश्न है। और व्यक्ति अंदर जो कमी है, खालीपन है, उसको कई बार भोजन से भरता है, जो बेचैनी है उसको भोजन से भरता है, पकवान से भरता है। उसमें दो तीन और बातें हैं। भोजन करते समय सबसे पहली बात जो नियम है, हंगरलेस ईटिंग ना हो, भूख नहीं है फिर भी जबरदस्ती खा रहे हैं। सेकंड, ओवर ईटिंग ना हो, ओवर ईटिंग। तीसरा, क्रोध में भोजन ना खाया जाए, कंप्लेन के साथ ना खाया जाए। एंड फोर्थ, रॉन्ग टाइप ऑफ फूड। और रॉन्ग टाइप ऑफ फूड भोजन के तीन प्रकार है, राजसिक, सात्विक, तामसिक। जो अति तीखा है और आदि तेल वाला है और आदि मिर्च मसाले वाला है, वो सब राजसिक भोजन है, भले वो भगवान को अर्पित किया गया है। जगदीश भाई का पूरा आर्टिकल है इसके ऊपर, हा करके करके निकलते, तब तक मजा नहीं आता है खाने के बाद। कहते थोड़ा सा मसाला और थोड़ा थोड़ा करते करते हथौड़ा लगता है, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, और फिर बीमार पड़ते। संयम, योगी अल्पाहारी होता है। भोजन के और तीन नियम, पहला सम्यक भोजन हो, सम्यक अर्थात राइट फूड, कम। दूसरा, वो भोजन ना खाए जिससे उत्तेजना उत्पन्न हो शरीर में। और तीसरा, वो भोजन ना खाए जिससे आलस और प्रमाद उत्पन्न हो, खाने के बाद इच्छा ही नहीं होती है कुछ, सो जाते, आलस आता है। ये सब भोजन के नियम है। और सबसे महत्वपूर्ण, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्चति, जो सब करते ही भोग लगाकर फिर स्वीकार करना, उसके सिवा ना। कुछ दिन पहले मुरली थी मेरे साथ, बाप की, बाप का हुक्म है ये, क्या आज्ञा है, मेरी याद में भोजन खाओ। अभी अभी मुरली चली ना, एक हफ्ता के अंदर प्रश्न था, तो वो फूड, अगली गृहस्थी परिवार, फैमिली, ये परिवार ही गृहस्थी ना बन जाए। इस परिवार में हमारे जो भी संबंध है उसमें डिटैचमेंट हो, अलौकिकता हो, रॉयल्टी हो, बहुत ज्यादा अलौकिकता ना हो परिवार के अंदर। एक भाई हमको कह रहा था, हम क्या करें बोलो, हमारे सेंटर पे मुरली चलती और मुरली होने के बाद तीन चार भाई बैठते और पॉलिटिक्स की चर्चा करते बैठते, उसी हॉल में जहां भी अभी मुरली चली थी, और उनको कोई कुछ कह भी नहीं करता सकता। ऐसा वायुमंडल ना हो, इट्स अ वेरी प्योर एटमॉस्फियर। इस परिवार को अलौकिक परिवार ही रखना है, लौकिक वाली बातें इस परिवार में मिक्स नहीं करनी। उसके बाद में 13वीं गृहस्थी, गिफ्ट्स, सौगात, ये भी माया बन जाती है कहीं कहीं। वस्तुएं, गिफ्ट्स कहो या वस्तुएं, वस्तुओं की गृहस्थी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए। जहां पर भी आप रहते हैं, जो भी आपके छोटे छोटे सेवा केंद्र हैं, वो सभी आश्रम जैसे हो। फाइव स्टार होटल नहीं बनाना है हमको, आश्रम चाहिए, जहां पे कोई आत्मा आए तो उसे अलौकिक शांति का अनुभव हो। और लास्ट 14वीं गृहस्थी है ड्रेस, गारमेंट्स, कपड़े। व्हाइट में भी फैशन, क्रीम, डिओड्रेंट, पाउडर, टैटू और मेहंदी, ये सब तो छोड़ चुके हैं, उस दुनिया में, परंतु फिर भी ये बीच बीच में माया बन के आ जाती है। इस्लाम धर्म में 5 नियम हैं बहनों के ड्रेस के। इस्लाम में 5 प्रिंसिपल्स। पहला, हाथ और पैर बस इतना ही खुला हो। इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं, आपको जानकारी के लिए नोट करके रखो, फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन। दूसरा, ट्रांसपेरेंट ना हो, पारदर्शी ना हो कपड़े स्त्रियों के। तीसरा, भाइयों के जैसे ना हो, नॉट लाइक मेल्स। चौथा, भड़काऊ ना हो, उत्तेजना उत्पन्न करने वाले ना हो। और लास्ट, स्वच्छ हो, फटे हुए ना हो। तो ये टोटल ऐसी 14 गृहस्थी है। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। पहला बताया, अलौकिक संबंध में लौकिकता, अपने संबंधों को अलौकिक करते जाना है। स्टूडेंट के साथ जो संबंध है वो अलौकिक हो, उनको रहे कि ये सेंटर की बहन है, उसको उसी दृष्टि से वो देखे। इतना उसके साथ घुल मिल नहीं जाना है कि ही विल स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड। वो डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहे, दूरी। इसको इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, दूरी रहे थोड़ी। इतना घुल मिल जाना कि वो यही भूल जाए कि ये एक बहन है। और ब्रह्मा कुमारी संसार की सबसे बड़ी डिग्री है, इससे बड़ी और कोई डिग्री नहीं है। उसके प्रति जो स्टूडेंट्स का रिस्पेक्ट है वो हमेशा के लिए वैसा ही रहे। दूसरा, अलौकिक सेवा। सेवा कैसी हो? अलौकिक सेवा हो, ये गृहस्थी ना बन जाए। ये हमारे खुशी है इसलिए सेवा कर रहे, सेवा कर रहे ताकि खुशी मिले, ये लक्ष्य नहीं है। अगला बताया, बहानेबाजी। पुरुषार्थ में कोई भी बहाना ना हो। BSNL जो बताया, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट नारद नहीं बनना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है व्यर्थ की बातों में, गॉसिप्स में। ये क्या करता है, वो क्या करता है, ये बहन ने क्या किया, वो भाई क्या करता है, मधुबन में वो क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, तुमको क्या करना है, मधुबन में क्या हो रहा है, मधुबन में हम ये सब करने जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं, मधुबन में तपस्या करने जा रहे हैं, बस तपस्या करनी है, अपनी पार्टी है उनका ध्यान रखना है और अपनी व्यक्तिगत तपस्या करनी है बस। फिर वो उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, ये भाई क्या करता है, वो भाई क्या करता है, व्हाट इज दैट टू यू, दिस इज वेस्ट। अगला बताया, बहानेबाजी। कोई भी बहाना नहीं, अब तक बहाने दिए बहुत कर लिया, अब तीव्र पुरुषार्थ, खुद का खुद ही चालू करना है। जहां रहते हैं, जिस परिस्थिति में है, जिन लोगों के बीच में है, वहीं पर बैठकर। अगला, सुख सुविधाएं, कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस। आज है कल नहीं रहेगी, तो भी पुरुषार्थ चालू रहे। अगला, कंपटीशन, कंपैरिजन नहीं करना है किसी के साथ। ये समझ लो हर आत्मा यूनिक है, मास्टरपीस है, हर एक का अपना पार्ट है और हर एक उसी अनुसार क्षमता कर रही, सेवा कर रही है जो उसको करनी चाहिए। इसके लिए हमें किससे ईर्ष्या, ये ज्यादा सेवा करती है इसलिए हमें क्या मिलेगा, सफलता मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। हमें ईर्ष्या के वाइब्रेशंस आएंगे, ईर्ष्या से ईर्ष्या आएगी, सफलता नहीं आएगी। अगला, डिजिटल सेवा। मोबाइल का प्रयोग करना है परंतु उतना ही जितना सेवा के लिए हो, किसी से इसके ऊपर किसी से इतने कॉन्टैक्ट्स, बंधन बन जाएगा ये। अगला, डिपेंडेंसी। कोई भी डिपेंडेंसी ना हो, जितना हो सके स्वयं को इंडिपेंडेंट रखना है। योगी अर्थात जो स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं है उसको। अगला, अहंकार, ईगो, अभिमान और अपमान, मुरलियां चली है इसके ऊपर। अगला अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस। एक बाबा से सारी अपेक्षा है बस, किसी से और कुछ नहीं। हाँ कोई सहयोग दे तो बहुत अच्छा, न दे तो भी अच्छा, क्योंकि जरूरी नहीं हर बार सब सहयोग देंगे, कभी विरोध भी करेंगे। और ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकतु होंगे। और ब्रह्मा कुमारी बहन के लिए ये ब्राह्मण परिवार एक पेपर है, एक एक ब्राह्मण आत्मा, ये ब्राह्मण परिवार एक एग्जामिनेशन हॉल है, और एक एक आत्मा पेपर, एक एक आत्मा पेपर है, जिसका हमने कोर्स कराया, जिसका हाथ पकड़ के मधुबन ले गए, जिसको चार धाम दिखाए, जिससे बाबा को मिलाया, एक दिन वही उठ के हमारा ही विरोधी बन जाता है, तो क्या करेंगे? हिसाब किताब हर एक के साथ है, एक एक आत्मा पेपर है। ये परिवार क्या है? एग्जामिनेशन हॉल, जिसमें हम बैठे पेपर लिखने। अगला भोजन, भोजन, भोजन के कुछ नियम बताए, उसके बाद में परिवार, परिवार के लिए कुछ बातें पहले भी बताई। एक महत्वपूर्ण बात सभी टीचर्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स है उनकी पालना बहुत प्यार से करनी है, पर डिटैच रह के, वो उधर हम इधर। संसार का क्या वातावरण है, वो घरों में जाके क्या करते हैं किसको पता, चार दीवारों के अंदर विकारी वासनाएं हैं संसार में। प्यार करना है उनसे, मोहब्बत, पालना, सेवाएं, सब कुछ, पर डिटैच्ड, वो उधर हम इधर। अगला गिफ्ट्स, वस्तुएं, वस्तुएं व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कोई माता है जिसको हमने सेवा दी और उसने नुकसान कर दिया, उसको बहुत डांटा, माता चली जाएगी, वस्तुएं तो आ सकती है, माता नहीं आएगी फिर से। एक कुमार है जिसने बहुत सेवा करता है, एक दिन ऐसी गलती कर दी उसने, हमने इतना डांटा उसको, वो छोड़कर चला गया, नहीं आएगा फिर, वो कुमार वापस नहीं आएगा। वस्तुएं तो आ जाएगी, व्यक्ति नहीं आएगा वापस। वस्तुओं से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वो दादी प्रकाशमणि का उदाहरण है, वो सेवाधारी भाई आया, इतना बड़ा पतेला था शांतिवन में जिसमें छाछनी बनी हुई थी, सुबह 4 बजे आया, अंधेरे में कुछ दिखा नहीं उसको, वो पूरा उड़ेल दिया उसने, कितने किलो की उसमें शक्कर होगी, उसको लगा पानी है। और जब पता चला सारे डिपार्टमेंट को, वो इतना डर गया, सबने बताया बस तुझे तो घर जाना पड़ेगा, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने यज्ञ का। और वो अभी अभी नया सेवाधारी था, तुमने देखना चाहिए था, लाइट लगाना चाहिए था, इतनी उसको, इतने लोगों ने इतने भाषण दिए, क्लास कराई। और जब 10 बजे तो खबर आई, दादी प्रकाशमणि ने बुलाया है, बस तब तो पूरा गया दादी कॉटेज में निमंत्रण आया है, और बाकी लोगों ने डराने का और ज्यादा काम किया, बेचारा डर डर के गया, ये सोच के उधर सामान भी पैक करके रखा, बस अब घर जाऊंगा तो दादी के उधर गया, दादी ने कहा बैठो, बैठा नीचे देखकर, दादी ने कहा नाश्ता किया, ना किया, दादी ने कहा टोली खाओगे, खाऊंगा, टोली खाई, अब कुछ नहीं, जाओ, कोई चर्चा भी नहीं, नथिंग, इसलिए तो टिक गया हो, अगर एक शब्द भी बोल दिया होता हमेशा के लिए चला गया होता। देख लिया ना दादी ने, उसको समझ में आ गया है, अपनी गलती का एहसास हो गया, अभी और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वस्तुओं के पीछे पागल नहीं होना है, पैसे, वस्तु, ये सब गृहस्थी है, नुकसान हो गया चलो, पर सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। सेवा की कीमत है 1,000, व्यक्ति की कीमत है 1,00,000, और स्थिति की कीमत है 1,00,000। ये 3 चीजें हैं, स्थिति टॉप मोस्ट, बाद में व्यक्ति, और थर्ड नंबर में सेवा। कहां थे हम, कौन सी गृहस्थी, ड्रेस से पहले वाला चालू था, गिफ्ट्स, और लास्ट बताई गारमेंट्स, ड्रेस। हमारे ड्रेस में सादगी हो, स्वच्छ हो, जो तो है ही पहले से ही, परंतु ये हमको दूसरों को भी सिखाना है, जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं उनको, तो ब्रह्मा कुमारी जीवन में भी गृहस्थी हो सकती है, उसकी ये सारी बातें थी। ठीक है, सभी अलर्ट होके बैठेंगे। ओम शांति।
राम में शक्ति अगर है, राम में साहस है, तो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को। जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ। राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है।